1 अगस्त जलंधर के प्रवचन का सार, छोटी छोटी गलतियों से बचने वाला बड़ा बड़ा लाभ कमा लेता है। एस्टरिस्क द 1 अगस्त को जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने गुडमंडी जैन स्थानक में उपस्थित जनसमूह को फरमाया कि हमेशा छोटी छोटी गलती से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं पत्थर से ठोकर खाते हैं। छोटी छोटी गलतियां बड़ा बड़ा नुकसान कर जाती हैं। 1 मिनट की देरी से ट्रेन का समय निकल जाता है, यात्रा की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जिसने 1 पैसे की कीमत नहीं जानी, वो किसी न किसी दिन करोड़ रुपए गंवा बैठता है। बड़ों का रिस्पेक्ट, रोड के नियमों का पालन, गैस सिलेंडर को परफेक्ट बंद करने की सावधानी, शोरूम को लॉक करने के प्रति सतर्कता, बटन ऑन ऑफ करने के प्रति जागरूकता आदि कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो सावधानी से करने जरूरी हैं। छोटे छोटे कार्यों के प्रति विवेक आपकी भीतरी छवि को दर्शाने वाले हैं। वर्षों पहले अमेरिका में चलती वर्षा के समय ऑफिस बंद करने का समय आ जाने से मार्केट बंद हो रहा था। उस वक्त एक संभ्रांत घराने की महिला जो घूमने गई थी, वर्षा से बचने के लिए खड़ी थी। एक व्यक्ति जो ऑफिस बंद करके बाहर निकला, उसने उस महिला को देखा तो शिष्टतावश वर्षा से बचने के लिए ऑफिस से कुर्सी निकालकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। वर्षा बंद होने के बाद वो व्यक्ति ऑफिस बंद करके गया। दूसरे दिन उसके पास अमेरिका के श्रीमंत हेनरी फोर्ड की पत्नी के समाचार आ गए। उसे बुलाया गया और उसे नई बन रही बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बना दिया, क्योंकि कल जिसको वर्षा से बचाया वो हेनरी फोर्ड की पत्नी थी। छोटा सा अच्छा काम बहुत बड़ा फल दे जाता है। छोटे छोटे अच्छे काम बड़े बड़े कष्टों से बचा लेते हैं। सामायिक करने के साथ ही हर दिन 32 दोषों को पढ़ना जरूरी है, ताकि साधना में इन दोषों से बचा जा सके। दूसरा, सामायिक में अतीत के 24 घंटे का चिंतन करके गलत कृत कार्यों के लिए मिच्छामी दुक्कड़म बोलना चाहिए। कई बार लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे एक राजा रोज मांस खाता था, वह बड़ा दुर्व्यसनी था। उसके अवगुण देखकर जनता में उसकी बड़ी आलोचना होने लगी। स्थान स्थान पर लोग उसकी निंदा करते थे। यह देखकर राजा ने विचार किया कि किस प्रकार इस लोकनिंदा से बचा जाए। उसने अपने दरबारियों से परामर्श किया। एक विद्वान जो कि व्याख्यान देने में चतुर था, उसने राजा को परामर्श किया कि वो कुछ भी ऐसी धार्मिक क्रियाओं में लग जाए जिससे जनता सोचने लगे कि राजा तो बड़ा धार्मिक है, और उसकी निंदा करना बंद कर दे। यह परामर्श सुनकर राजा ने पूछा, ऐसा कैसे करना चाहिए? उस पंडित ने उत्तर दिया, राजन, इसमें करना क्या है? आप किसी पंडित को बुलाकर 1 घंटे के लिए उससे पुराण सुन लिया करिए। जनता सोचेगी कि आह, राजा जी तो पुराण सुनते हैं, बड़े धार्मिक हैं। राजा को बात जंच गई। वो बोला, तब तो पंडित जी मैं और किसे ढूंढने जाऊं? आप ही आ जाओ। पंडित ने पूछा, आप मुझे कितना वेतन देंगे? राजा ने पंडित को प्रतिदिन सोने के 2 टके देना स्वीकार किया और बात पक्की हो गई। राजा प्रतिदिन पुराण सुनने लगा और पंडित प्रतिदिन सोने के 2 टके प्राप्त करने लगा। दोनों प्रसन्न थे। एक दिन पंडित के संबंधियों का समाचार आया कि विवाह का प्रसंग है, आपका इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। अब पंडित असमंजस में पड़ गया कि यदि उस विवाह में सम्मिलित होने जाता हूँ तो 1 सप्ताह लग जाएगा और सोने के 14 टकों की हानि हो जाएगी, और यदि नहीं जाता हूँ तो संबंध टूट जाता है। बड़ी उलझन है, क्या किया जाए और क्या न किया जाए। पंडित का लड़का विद्वान था। उसने अपने पिता को चिंतित और देखा तो पूछा कि वे क्यों चिंतित हैं। जब पंडित ने सारी बात कही तो उसने कहा, पिताजी, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक विवाह में सम्मिलित होने पधारिए, मैं राजा को पुराण सुनाने चला जाया करूंगा। इस प्रकार दोनों ही कार्य हो जाएंगे। पंडित को बात ठीक लगी। उसने लड़के को सावधान किया कि पुराण ठीक से सुनाना और स्वयं विवाह यात्रा पर चल पड़ा। पंडित पुत्र राजा को पुराण सुनाने गया। उस पंडित पुत्र ने अपने व्यवहारिक जीवन में एक गुण अपना रखा था कि किसी को धोखा नहीं देना, जैसी हो वैसी सत्य बात कह देगा। पुराण वाचन के समय एक श्लोक ऐसा आया कि तिल सर्षप मात्रम च यो नरो मांस भक्षति समृत्वा नरकन यान्ति यावत चंद्र दिवाकरो। उस श्लोक का सारांश यह था कि तिल सरसों मात्र भी मांस जो मनुष्य खाता है वो नरक में जाता है और वो नरक में तब तक रहेगा जब तक कि चांद सूर्य आकाश में घूमेंगे। पंडित पुत्र ने सच सच बात थी वह बता दी। श्लोक का जैसा अर्थ था वह कर दिया, किंतु इस कटु सत्य को सुनकर राजा चिढ़ गया और कुपित हो गया। वो बोला, पंडित अपना पोथा बंद करो, मैं तो आज तक मनो मांस खा गया हूँ। तुम्हारे पुराण के अनुसार मुझे नरक हो ही गया और वह भी अनंत काल के लिए। सो मुझे अब तुम्हारा पुराण नहीं सुनना और सोने के टके भी नहीं देने हैं। तुम जा सकते हो। पंडित पुत्र सत्यवादी था, स्पष्टवादी था। उसने कहा, हाँ राजन, पुराण तो ऐसा ही कहता है। और इतना कहकर वो अपने घर चला आया। जब उसका पिता घर लौटकर आया तो उत्सुक होकर उसने पुत्र से हालचाल पूछा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, सोने के टके अपने आ रहे हैं कि नहीं। पुत्र ने जो कुछ घटित हुआ था वह सब कुछ अपने पिता को बता दिया। पंडित सिर पीट कर रह गया, बहुत क्रोधित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। बोला, अरे मूर्ख, तूने घर आती लक्ष्मी को ठोकर लगा दी। हमें सच्ची बात से क्या मतलब है? जिसे सुनकर राजा प्रसन्न रहे वैसी ही बात सुना देनी चाहिए, हम तो व्यवसायी हैं। लड़के ने जो उत्तर दिया वो मनन करने योग्य है। उसने कहा, पिताजी मैं तो भूखों मर जाना श्रेयस्कर समझूंगा, किंतु धोखेबाजी करना मैं पाप समझता हूँ। अर्थ का अनर्थ मुझसे नहीं हो सकता। आखिर पंडित अपना पुराण लेकर स्वयं राजा के पास गया और बोला, राजन मैं बाहर गया था, मेरा लड़का अभी छोकरा है, उसे अनुभव नहीं है। आप रुष्ट न हो, मैं आपको पुराण सुनाता हूँ। राजा ने कहा, मुझे पुराण वुरान अब कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो नरक में जाना ही है, अब मैं सोने के टके देने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर पंडित ने कहा, महाराज मैं आपको बिना मूल्य लिए ही पुराण सुनाऊंगा, आप सुनिए तो सही। आखिर पुराण पाठ आरंभ हुआ, वही श्लोक सामने आया, तिल सर्षप मात्र च। इसे सुनते ही राजा फिर चमका, बोला इसका अर्थ आपका पुत्र मुझे बता गया है, आप रहने दीजिए। तब पंडित ने कहा, आप इसका अर्थ जरा ध्यान से सुनिए, वो बच्चा क्या अर्थ बताएगा। राजन इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो तिल सरसों जितना ही मांस खाता है वह नरक में जाता है, किंतु आप जैसा राजा जिसे कि मांस खाना ही पड़ता है वो यदि मनोबंध मांस खाता है तो वो नरक में नहीं जाता। तब आप जब मांस खावे तो तिल सरसों मात्र मत खाइए, खूब खाइए, भर पेट खाइए, मनोबंध खाइए। बंधुओं यह कैसी क्षुद्र कैसी स्वार्थ प्रेरित दृष्टि है। जब ऐसी दृष्टि आ जाए तब सत्य का निरूपण किस प्रकार हो सकता है, और जब तक सत्य का निरूपण नहीं होता तब तक मनुष्य की आत्मोन्नति कैसे संभव है। अतः बंधुओं सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मंगलमय शांति प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु सद्गुरु की शरण लीजिए, और यह भी कभी न भूलिए कि जैसी संगति होगी वैसा ही जीवन बनेगा। इसी तरह कई तथाकथित क्रियावादी महान संत ये कहने लगे हैं कि सूर्योदय के पहले खा लो पानी पी लो, बाद में नवकार सी कर लो। यह तरीका गलत है, क्योंकि जैनी के लिए नवकार सी करने से पहले रात्रि भोजन का त्याग जरूरी है। जैनियों का पहचान है कि वो रात को नहीं खाता। जब रात को खाना ही नहीं तो पचखान तो सूर्योदय के बाद ही चलेंगे। इसका मतलब रात को खाना नहीं बल्कि रात्रि त्याग तो अंडरस्टूड है। अर्थ का अनर्थ करने वालों से बचिए। जैसे कि एक शराबी को समझाने के लिए कहा श्री यीशु जी कहते, है कि शराब खूब पियो या नरक जाने का रास्ता है, तो वो शराबी बोलता है कि भगवान यीशु भी कहते हैं कि शराब खूब पियो, तो मैं तो वही कर रहा हूँ। वो किसी ने कहा आगे भी तो सुनो, तो वो बोला मेरा जब शराब खूब पियो, इतने से सुनने से काम चल सकता है तो आगे क्यों सुनूं? इसे कहते हैं अज्ञानता। अतः धर्म को भी सुनने के बाद प्रज्ञा से समीक्षा करके जीवन में उतारिए। मोहपत्ति का मतलब है कि मुंह पर होने वाला वस्त्र। मोहपत्ति तो मुंह पर रहने पर ही शोभा पाती है, जिस तरह पायल भी पैर में ही शोभा पाती है। नवकार सी के लिए सभी मूर्धन्य आचार्यों ने मिलकर निर्णय लिया कि कोई भी शास्त्रीय पच्चखान तभी तक माने जाएंगे जब रात्रि 12 o'clock बजे बाद पानी पीना भी बंद कर दिया जाए, तो सुबह सूर्योदय से 48 मिनट तक नवकार सी हो जाती है। सभी शास्त्रीय पच्चखान इसी तरह होते हैं। सामायिक भी हमारी सभी दोषों से दूर शुद्ध होनी चाहिए। धर्म प्रभावना asterisk the 1st of August की तपस्या तेला राजेश जैन, बेला आस्था जी जैन, उपवास मीनू जी, राजेश जी जैन, ग्रेटर कैलाश, अयम्बल रेनू जी जैन, बड़ी तपस्या धर्मवीर जी, अनु जी की -6, ज्योति जी, संत कुमार जी जैन, 22 शिविर 2 से द 4th of August व द 6th of August 9:30 से 10:30 तक चलेगा। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।